महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 14 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं भूतबलिप्रणीतं तं बन्धकत्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का ये छठे नंबर का खंड है। इसमें जो सबसे पहले जो प्रथम प्रकृति बंध अधिकार है, पहले पुस्तक का पूरा विषय यही है, तो ये प्रथम पुस्तक के पृष्ठ संख्या 56 पर आ गए, 56। देखो, हमने तो ये तो प्रकृति समुत्कीर्तन देखा, फिर बंध स्वामित्व विषय देखा, उसके त्रुटित अंश को भी हमने देख लिया है पुस्तक नंबर 8 के आधार से। उसके पश्चात जो काल प्ररूपणा है, किसी भी प्रकृति का लगातार बंध काल कितना है, मिनिमम मैंने जघन्य बंधकाल कितना और उत्कृष्ट बंधकाल कितना, इसकी चर्चा हमको देखनी है। परंतु ये त्रुटित अंश में वो उसका ओघ का अंश चला गया है, और नरक गति इन जनरल जो हम कहेंगे नरक गति का ओघ जिसको कहेंगे आदेश में नरक गति का स्टार्टिंग का चला गया है। लास्ट में केवल वो तीर्थंकर प्रकृति की बात आई है, और फिर एक एक नरक में अलग अलग उन्होंने बताया। तो हमने ये लिखा था, उसमें कैसे सोचना है, तो मिथ्या दृष्टि जिन प्रकृतियों का बंध करता है, अभी पहले मिथ्या दृष्टि की बात छोड़ो, ध्रुवबंदी जो प्रकृतियां हैं, ध्रुवबंदी ने अपने अपने बंध विच्छित्तक बनती रहती है, तो उनमें कैसे सोचना है, उनमें अनादि अनंत भंग है, अनादि शांत भी है और सादि शांत भी है। अनादि अनंत तो अभवों के लिए होगा, अनादि शांत पहले से तो बंध विच्छित हुई तो शांत हो गया, और फिर सादी शांत बंध विच्छित के बाद फिर नीचे के गुणस्थानों में आया और फिर ऊपर चढ़ा, तो उसको सादी शांत कहेंगे। तो सादी शांत कितना काल है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसकी चर्चा हमने देखी थी। जैसे मिथ्यात्व का सादी शांत कितना होगा, जघन्य अंतर्मूर्त होगा, उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल होगा, इस तरह से हमको सोचना है। ये हमने अलग अलग प्रकृतियों पर देख लिया था। अभी फिर नरक में भी स्टार्टिंग में हमने सब निकाला था। कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपके पास वो पुस्तक है तो देख लेना, हमने जो डिराइव किया था ना, आप भी देख लो, आपके पास भी है 9 नंबर का पेज निकालना। इसके पहले मैं और कुछ बताना चाहती कि ये कैसे सोचना है, जो प्रति ध्रुवबंदी की तो बात कर दी अपने, अब जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, और प्रतिपक्षी प्रकृतियां मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि जो प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध जो है वो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त करेगा, बाद में उसको पलटेगा ही पलटेगा, मिनिमम एक समय मैक्सिमम अंतर्मूर्त। परंतु जैसे जो शुभ प्रकृतियां है जो सम्यक दृष्टि बांधता रहता है, जैसे पुरुष वेद है, मिथ्या दृष्टि उसका बंद करेगा तो एक समय से अंतर्मूर्त करेगा, पर सम्य दृष्टि जो उसी का बंद कर रहा है तो जब तक सम्यक्त्व है तब तक उसका बंद करता रहेगा। ये सुभग सुस्वर आदि के बारे में भी ऐसे ही समझना। अन्य जो है प्रकृतियां, उनको ओग से भी जो है एक समय से अंतर्मूर्त करो, और जो सम्य दृष्टि जिन शुभ प्रकृतियों का बंद कर रहा है लगातार, उसके लिए एक समय से लेकर जो सम्यक्त्व का काल होगा ओघ में जो है, तो दो शास्त्र सागर या साधिक दो शास्त्र सागर, इस तरह से हमको लेना है। यहां तक समझ में? तो ये हमने उसमें जब डिराइव किया था तब हमने प्रतिपक्ष प्रकृतियों में साता असाता लिया, स्त्री ने पुस्तक वेद लिया, हास्यरति अरति शोक लिया था, नरक गति नरक गत्यानुपुरी, ब्रह्म नौ पेज पर देखना। ये सब प्रतिपक्ष प्रकृतियों को लेना है हमको। अभी मनुष्य गति तिरंज गति को छोड़ना है, क्योंकि सम्य दृष्टि उसको लगातार मनुष्य गति को बांधेगा, तिरंज गति लगातार वो अग्नि का एक वायु का एक बांधेंगे, इसलिए उसको छोड़ दिया। देवगति का बंधन लगातार समय दृष्टि करेंगे, इसलिए यहाँ केवल नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी वो लिया है। चार जाति ने एक इंद्रिय से चार जातियां है, क्योंकि समय दृष्टि पंचेंद्रिय का लगातार भंग करता रहेगा। आहार द्विक ऐसी भी तो अंतर्मुख, हाँ, ऊपर के गुणस्थानों में बनती है, और बंद करके एक समय में मरण हो जाए तो भी वो तो एक समय बन सकता है। पांच संस्थान पांच सब ये जो हमने देखी थी एक समय से अंतर्मूर्त। अब इसमें हमने साता वेदनीय को भी डाला था। इस पैराग्राफ के बाद आप घर जाने के बाद उसमें ऐड करना, एक लाइन आपको ऐड करनी है। जो हमने साता असाता वगैरह उसको हम साता दंडक कहते थे, सारे जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां थी, और उसमें प्रतिपक्ष में तो जो मिथ्या दृष्टि अशुभ बांधता है उसको लिया था, सम्य दृष्टि शुभ बांधता है उसको छोड़ा था। तो इन प्रकृतियों के जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुख। अब यहाँ ये लिखना है, इतनी विशेषता है कि ब्रह्मा, तीन पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन लिखनी है, यानी साता वेदनीय का जो पैराग्राफ है ना, उसके बाद पुरुष वेद के ऊपर नहीं, आज मैंने नहीं पर ये मुझे बाद में याद आया कि एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, इतनी विशेषता है कि देखो यहाँ से ले लो, हाँ, पूरी एक लाइन बीच में लिखनी है आपको, नौ पेज मर घर जाके वो लिखना आप, नौ नंबर के अपने जो बुकलेट के, हाँ हाँ, इतनी विशेषता है कि साता वेदनीय का लोगों को लेने दो, लिखने दो, साता वेदनीय का उत्कृष्ट बंधकाल, कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि सातवें गुणस्थान के ऊपर गया तो साता वेदनीय का ही बंद कर रहा है। अब तेरहवे में रहने का काल तो बहुत बड़ा है, उस अपेक्षा से लेना। कुछ कम एक पूर्व कोटि है, अकेले समय दृष्टि होता है तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में साता साता का बंद करेगा, पर ये तेरहवें गुणस्थान की अपेक्षा हमको लेनी है तो यहाँ कुछ कम एक पूर्व कोटि लेना पड़ेगा। यहाँ तक ये एक वाक्य यहाँ ऐड करेंगे, ये वाक्य मैंने बहुत जगह ऐड किया है पर यहाँ ऐड करना रह गया था, तो ये हो गई बात। अभी हम आज का हमारा जो विषय है, हमने नरक में इन जनरल बात देखी थी, अब यहाँ कल हमने देखा ना जो नारकी जो है वो पांच ज्ञानावरण वगैरह का बंद कौन करते है, तो पहले से उसका भी काल देखना है, तो काल कितना होगा उसका। अभी नारकी का जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है उसका होगा, क्योंकि वो ध्रुवबंदी है, सभी नारकी बांधते हैं ध्रुवबंदी, यानी कौन से जो चौथे गुणस्थान तक बनती है ऐसी ध्रुवबंदी लेना है, मिथ्यात्व स्थान वृद्धि उसको नहीं लेना है। तो उनका बंधन नारकी कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33,000, यानी हमें सोचना कैसा है। अभी उनके लिए भी जो ये मिथ्या दृष्टि जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां बांधता है वो भी एक समय से अंतर्मूर्त हो, सम्य दृष्टि जो बांधता है चौथे गुणस्थान वाला, तो उसका इन जनरल हम कुछ कम 33,000 कहना है, क्योंकि नारकी की ओर प्ररूपना है, नहीं नारकी इन जनरल हमको देखना है। एक एक नरक की अलग बात होगी तो वहां की हम आयु को कंसिडर करेंगे। यहां तक देखी थी हमने बातें, और फिर उसमें जो पुस्तक में जो 55 पेज पर शुरू हुआ था, तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंधकाल 84,000 देखा था, और उत्कृष्ट साधिक 3 सागर देखा था, जो तीसरे नरक के तीर्थंकर का बंध करने वाले की उत्कृष्ट आयु इतनी हो सकती है, साधिक 3 सागर। वहां की जो उत्कृष्ट आयु है 7 सागर, वो नहीं, इतना नहीं होती है। और फिर हरेक नरक में जो अलग अलग उन्होंने बताया था, हर एक नरक की जो उत्कृष्ट आयु या जघन्य आयु वहां उन्होंने बताया था, ये तो हमने कल पढ़ा था, अभी हमको आना है 56 पेज पर। कुछ आपका प्रश्न है ब्रह्मा? कल हमने पढ़ा था ना ये? हाँ, देखो देखो यहाँ क्या, 55 पेज निकालो। आपकी क्या शंका है? मिल नहीं रहता। देखो नीचे का पैराग्राफ जो नरक गति में लिखा है ना, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देशों ने 33 सागरोपम है। तो देशों ने 33 सागरोपम किसके लिए होगा? जो सम्य दृष्टि जिन प्रकृतियों का बंद करता है उनके बारे में। हाँ, सातवें नरक का देखो आप कोई पुस्तक निकालो, क्योंकि वहां तो एक ही वाक्य है ना, तो वो किसके बारे में होना चाहिए? तो जो समय दृष्टि सातवें नरक का नारकी बांधेगा, पुरुष वेद है, मनुष्य गति संबंधी जो प्रकृतियां हैं वो सब, आयु को छोड़कर उच्च गोत्र भी लेना उसमें, तो कुछ कम 33 सागर, क्योंकि इतने काल तक वो सम्यक्त्व में रहेगा। यहां तक हो गए, फिर तीर्थंकर एक प्रकृति लेनी है, तो उसके बंद काल कितना है? तो पहले नरक में तो मिनिमम 84,000, और तीसरे नरक में मैक्सिमम कुछ साधिक 3 सागर। समझ में यह लिखा है? देखो और पहले से छठे नरक तक अलग अलग देखना है तो प्रथम दंडक का, प्रथम दंडक किसको कहेंगे? मिथ्यात्व का नहीं ले सकते, ज्ञानावरण वाला दंडक पहले दंडक होता है, क्योंकि ध्रुवबंदी जो चौथे तक बनती है उसकी बात है। तो पहले नरक का समय दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, ज्ञानावरण का तो बंधक होगा ही होगा। मिनिमम कितना? 10,000 वर्ष, मैक्सिमम 1 सागर, क्योंकि वहां की उत्कृष्ट आयु उतनी है। दूसरे नरक का भी हरे आगे आगे वाले के केवल उत्कृष्ट बताना, क्योंकि जघन्य कितना होता है, तो नीचे के जो उत्कृष्ट है उसमें एक समय बढ़ा देना, 1 सागर और 1 समय से लेकर 2 सागर, इस तरह से 3 सागर, 3 सागर, फिर 7 सागर तीसरे के लिए, पांचवे के लिए 10 सागर, फिर 17 सागर। यानी उत्कृष्ट कितना होता है तो वहां 22 सागर हो जाता है मिनिमम। नीचे के जो उत्कृष्ट है वो ऊपर के मिनिमम है। हाँ, पर उन्होंने 17 इतना ही लिखा है, बाद में सबके बाद कुछ अधिक लिख दिया है। 17 किससे कुछ अधिक? कुछ अधिक में एक समय अधिक करना था अपने को। आगे बढ़े, अभी 56 पेज पर आना। देखो वहां एक बात मैं फिर से दोबारा बताना चाहती हूँ, पेज नंबर 55 पर, जैसे साता दंडक हमने देखा ना, साता असाता वगैरह सबके लिए, अभी यहाँ असाता में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सबका जो प्रतिपक्षी है उसका एक समय से लेकर अंतर्मुख। कौन सी प्रतिपक्षी? जो समय दृष्टि शुभ बांधता है उसके छोड़ दो, बाकी जो है उसके लिए एक समय से अंतर्मुख होगा। अब यहाँ पहले से छठे नरक तक तीर्यंच गति त्रिक को इसी में लेना, नहीं समझे? साता असाता जैसे एक समय से अंतर्मूर्त होता है, छठे नरक तक तीर्यंच गति का बंध भी एक समय से अंतर्मूर्त होगा। हाँ, तीर्यंच गति छठे नरक तक, मनुष्य गति इसका ऑप्शनल है, परंतु मनुष्य गति का उत्कृष्ट समय दृष्टि को लेना। ख्याल में आती है बात? अभी यहाँ क्या कहते हैं, पहले से छठे नरक तक साता दंडक में तीर्यंच त्रिक को भी इंक्लूड करना, ये कहते हैं वहां पर। यानी तीर्यंच गति त्रिक प्रविष्ट जो लिखा है ना, उसका अर्थ क्या है? उसमें तीर्यंच त्रिक को भी, वो तो ऑप्शनल जो प्रतिपक्षी वाली होती उसमें लेना है। साता दंडक में कौन से? हाँ, अभी आपने जो तीर्यंच गति नहीं, नारकी में तीर्यंच गति का बंध सातवें नरक के लिए उत्कृष्ट बंध कितना काल होगा? तो 33 सागर। पर छठे नरक तक तीर्यंच गति का उत्कृष्ट बंध कितने काल हो सकता है? अंतर्मूर्त तक, ये उसका अर्थ है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि नारकी छठे तक का, तिरंज गति मनुष्य गति अंतर्मुर से ज्यादा नहीं बांध सकता। उस साता दंडक में मनुष्य गति को इसलिए नहीं लेना है, सम्य दृष्टि उसका लगातार बंद करेगा। हाँ, इसलिए उसको नहीं लेना। कुछ कम वो सागर लेना पड़ेगा, क्योंकि समय दृष्टि की वहां की उत्कृष्ट आयु होनी चाहिए। वहां समय को प्राप्त करेगा तो कुछ कम एक सागर, और ऐसे भी समय दृष्टि यहाँ क्षाइक लेके गया तो भी कुछ कम एक सागर, कुछ कम एक सागर इतना लिखें तो दोनों इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कुछ कम एक सागर ऐसा होता है उसके कुछ पूरी क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति में हमें उन्होंने ही लिखा है। देखो पेज नंबर 56 ले लो। देखो विशेष में जो लिखा है ना, तीसरी लाइन चौथी लाइन तीर्थंकर प्रकृति का लास्ट में, बंदकाल प्रथम पृथ्वी में जघन्य से 84,000 वर्ष उत्कृष्ट से देशों ने एक सागर है। यानी सम्यक्त के साथ जो जाएगा वहां पर, अभी तीर्थंकर प्रकृति बांधे या नहीं बांधे, वो पूरा एक सागर का उसकी आयु नहीं होगी, कुछ कम होगी। और मिनिमम भी 10,000 वर्ष नहीं हो सकती, मिनिमम भी 84,000 वर्ष हो सकती है। इससे मैंने कहा है देशों ने एक सागर, और जो वहां जाकर प्राप्त करेगा उसका तो अंतर्मूर्त कम करना ही करना है। किसका प्रश्न आया है, मेरे ख्याल से वो चेन्नई वाले हैं, भूबलन, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि वो श्रेणिक राजा महावीर भगवान के वो समोचरण था वगैरह, तो हमने जो 16 कारण 16 देखे थे षोडश कारण, तो उसमें से उनको तो दर्शन विशुद्धि वगैरह तो होगा, परंतु सभी कैसे हो गए? तो हमने तो उसकी चर्चा की थी ना, एक में सभी गर्भित है, यानी उन्होंने साधु के तप नहीं किए हैं, परंतु उनके श्रद्धा में तो ये है ना, उसको तो मान ही रहे, या जो कर रहे उनके लिए उनकी अनुमोदना होती है, इस तरह से भी लेना उसको। हमने एक एक में सबको डिराइव किया था, एक एक भावना में अन्य भावनाएं कैसे गर्भित है उसकी चर्चा की थी। मुख्यतः से एक दो दिखाई देगी या होगी वहां पर, उसमें गर्भित रूप से समझनी है। हाँ देखो, अभी हम आते हैं 56 पेज पर। शुरुआत से पहली लाइन से फिर पढ़ते हैं। ओघ रचना वाला ताड़पत्र का अंश नष्ट हो गया, अतः ओघ रचना अज्ञात है। ओघ रचना यानी नरक की भी ओघ रचना अज्ञात थी, और मूल में ओघ रचना तो निकल त्रुटि थी, हो गई थी, वो हमने अभी देख ली है। मिथ्यात्व दंडक में इसी प्रकार जानना चाहिए। पुरुषवेद दंडक में अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, किंतु कुछ कम बंधकाल है। क्या कहते हैं, पहले पृथ्वी की बात चल रही थी क्या? मिथ्यात्व दंडक में, हाँ, यानी ये जो उन्होंने प्रत्येक पृथ्वी का जो कम मिनिमम और मैक्सिमम बताया ना, तो मिथ्यात्व दंडक का भी पर मिथ्यात्व का मिनिमम तो अंतर्मूर्त होगा। ये किसके लिए लिखा उन्होंने, मिथ्यात्व दंडक में इसी प्रकार जानना चाहिए। उनकी मूल में प्ररूपणा देखो, एक मिनट देखो, पेज नंबर 55 निकालो, ऊपर प्राकृत में देखो, उन्होंने जिसका ट्रांसलेशन किया है ना, मिथ्यात्व तो दंडक में इसी प्रकार जानना चाहिए, वो प्राकृत छोड़ो, मैं हिंदी में बताता हूँ। नीचे से दूसरी लाइन हिंदी में, स्त्यान वृद्धि दंडक का बंधकाल, नरक गति की ओग रचना के समान है। विशेष यह है कि यहाँ अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। हाँ, नरक गति में ओग में स्थान वृद्धि दंडक का बंधकाल बताएंगे आप, मिनिमम और मैक्सिमम? एक समय अंतर्मूर्त नहीं होगा, प्रतिपक्ष की अपेक्षा नहीं। स्थान वृद्धि को कहे कि प्रतिपक्षी संसाधन में आकर मरता है एक समय में उस अपेक्षा से। संसाधन में देखो, कोई कोई नारकी, अभी सातवें नरक को छोड़ो, ओग में है ना, जहां पॉसिबल है वहां होता है। नरक गति का ओग, ओग यानी वो सभी पूरे सभी चारों गति का नहीं, नरक गति इन जनरल जब बात करते हैं तो पहले से छठे नरक का नारकी कोई भी संसाधन में आया, समय दृष्टि था, तब स्थान वृद्धि वगैरह वगैरह नहीं बांध रहा था, अनंत अनुबंधी वगैरह, स्थान वृद्धि दंडक में वो अनंत अनुबंधी तीन इंच गति वगैरह वो लेना है, तो सम्यक तो छूटा उसका प्रथम उपशम, दूसरे में आया, एक समय तक उसका बंद किया और एक समय में बंद करके मरण हो गया, मरण होकर गया वो तीन इंच मनुष्य में कोई भी, तो वो स्थान वृद्धि दंडक का जघन्य काल एक समय होता है और उत्कृष्ट काल, अरे वो मिथ्या तो में ही रहा, तो उसकी पूरी के छावली नहीं लेना है, संसाधन का काल नहीं लेना है, स्थान वृद्धि का बंधक काल कितना है। हाँ, तो मिथ्या यहाँ पर नरक गति इन जनरल हम 33 अगर कहेंगे, और हर एक पृथ्वी का कहना है तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेने। तो कहते कि स्थान वृद्धि दंडक का बंधक काल नरक गति की ओग रचना के समान है। ये किसके लिए कहा था? प्रथम नरक से छठे नरक तक की बात है ये बात। यहाँ नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं लाइन में लिखा था, देखो, प्रथम नरक से छठे नरक तक स्थान वृद्धि का ओग के समान है, एक समय और उत्कृष्ट अपनी अपनी स्थिति, यानी पहले नरक की अपनी स्थिति, दूसरे की अपनी स्थिति, समझ में आई बात? ये इसमें डिफरेंस क्या होगा? अभी मिथ्यात्व के लिए अभी वाक्य पढ़ो, ये नेक्स्ट पेज पर 56 पर, मिथ्यात्व दंडक में इसी प्रकार जानना चाहिए, क्या विशेषता क्या होगी? मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त होगा, उसका जघन्य बंधकाल अंतर्मूर्त होगा, एक समय नहीं होगा। यहाँ लिखा है ना, हाँ, एवं मिच्छत्त दंडो, इसी प्रकार मिथ्यात्व दंडक में चाहना चाहिए, तो यह हम लिखे ना, उसका जघन्य बंधक काल अंतर्मूर्त होगा, यानी उत्कृष्ट अपनी अपनी स्थिति उस नरक की। वो एक समय का हो सकता है। हाँ, मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व दंडक में उसी प्रकार है, परंतु अकेली मिथ्यात्व प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति अकेली लेंगे तो प्रकृति लिखो, मिथ्यात्व पूरा दंडक है तो एक समय होता है उसका भी एक समय होगा और उत्कृष्ट अपनी स्थिति। मिथ्यात्व दंडक में नरक में जो मिथ्यात्व दंडक है उसमें मिथ्यात्व नपुसक वेद हुंडक संस्थान और संप्राप्त सुप्रतिका सहन है, इतने चार होते हैं, वो एक समय हो सकता है, मतलब अकेले मिथ्यात्व एक समय का कभी नहीं बंधेगा, वो तो अंतर्मूर्त तो बंधेगा, क्योंकि अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया उसने इस तरह से। क्योंकि हमने देखा सम्यक तो से अगर डायरेक्ट मिथ्यात्व में भी जाएगा तो भी एक समय में कोई नहीं मर सकता, अंतर्मूर्त के पश्चात ही मरेगा वो। फिर से कोई समय दृष्टि, आप कहते हैं समय दृष्टि है, अभी जैसे संसाधन में एक समय में मरकर अन्य गति में गया, ऐसा कोई समय दृष्टि सम्यक तो छोड़कर मिथ्यात्व में गया और मिथ्यात्व में एक समय करके वो अन्य गति में गया, तो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी गति में सम्यक तो छूटकर मिथ्यात्व में आए तो एक समय में कोई नहीं मरता, अंतर्मूर्त के पश्चात मरेगा। ये हमने बहुत बार देखा है अन्यत्र भी इसीलिए। अब पुरुष वेद दंडक में अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, किंतु कुछ कम बंधकाल है, क्योंकि हमने देखा था कुछ कम बंधकाल हमने देखा पुरुष वेद में, क्योंकि एक तो सम्यक्त्व के साथ जाने वाले नरक में, वो भी उसकी उत्कृष्ट आयु देशों ने एक सागर देखेंगे, और वहां जाने के बाद जो प्राप्त करता है तो अंतर्मूर्त उसमें चला जाता है, वो भी कुछ कम उसकी अपनी स्थिति होती है। यही है पुरुष वेद में उसका दंडक है। पुरुष वेद दंडक है कौन से, जो समय दृष्टि नारकी जिसको बांधेंगे उसको पुरुष वेद दंडक में लेना है। यानी जैसे मनुष्य गति वगैरह प्रकृतियां उसको भी ले सकते हैं पुरुष वेद दंडक में, अपनी अपनी स्थिति कुछ कम लेना। पुरुष वेद दंडक हमने कल देखा था, आपको याद होगा, तो कौन कौन सी ले सकते हैं उसमें, जो समय दृष्टि जिसको बांधेगा पुरुष, पंचेंद्रिय जाति तो मिथ्या दृष्टि भी बांध रहे हैं, उसको नहीं लेना वो भोग में ले सकते, यहाँ नहीं लेना। अन्य भव अन्य जो जीव है उनमें मनुष्य तिरंचों में ले सकते हैं। नारकी के लिए जो पुरुष वेद दंडक है, एक तो पुरुष वेद लेना, और फिर मनुष्य गति संबंधी जो है उसके आयु को छोड़कर वो पांच प्रकृतियां लेना, हाँ सुभग सुस्वर आदि भी लेना, और उच्च गोत्र को लेना। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। दो आयु यानी मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु को बंध का लोक के समान है। कहीं पर भी आयु का बंध अंतर्मूर्त ही होता है, मिनिमम वो छोटा अंतर्मूर्त, मैक्सिमम थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त। तीर्थंकर प्रकृति का बंध काल प्रथम पृथ्वी में जघन्य से 84,000 वर्ष, उत्कृष्ट से देशों ने एक सागर, इस विशेषा इस कथन से विदित होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंधक नरक में कम से कम, ये कुल नहीं, कम से कम 84,000 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा। उदाहरणार्थ श्रेणिक महाराज के जीव ने नरक में जाकर 84,000 वर्ष की आयु प्राप्त की है, बांधी थी तभी जाके वो घात होकर वहां उतनी आयु भोगेगा वो। दूसरी पृथ्वी में जघन्य बंधकाल साधिक एक सागर, उत्कृष्ट किंचित ऊन तीन सागर है तीर्थंकर प्रकृति के लिए। यानी वहां की भले आयु पूरी तीन सागर है परंतु थोड़ी कम तीन सागर होगी उसके लिए। तीसरी पृथ्वी में जघन्य से साधिक तीन सागर, क्योंकि उसमें एक समय अधिक या जो यथायोग्य होगा, साधिक में जो यथायोग्य होगा, और उत्कृष्ट साधिक तीन सागर बंधकाल है। इसका विशेषत तीसरी पृथ्वी में सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वहां उत्पन्न होने वाला जीव किंचित ऊन सात सागर पर्यंत सम्यक्त्वी रहने से उतने काल पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, किंतु इस संबंध में यह आगम बताता है उस कृति का उत्कृष्ट बंधकाल साधिक तीन सागर है, इससे अधिक बंधकाल की कल्पना करना आगम बाधित होगा। यानी हम तो अपनी बुद्धि से तर्क क्या लड़ाएंगे, तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु सात है और वहां कुछ कम करना, क्योंकि वहां जाने के बाद वो अंतर्मूर्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया था, पर वो सात सागर वाली आयु नहीं होगी ऐसे जीव को, कुछ कम होगी, कुछ कम यानी तीन सागर में कुछ अधिक होगी, उससे ज्यादा नहीं। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले के तीसरे नरक की आयु साधिक तीन सागर ही होगी, उससे अधिक नहीं होगी, ये कहना चाहिए।
यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट दोनों को साधिक तीन सागर बताए,
हाँ
तो साधिक में अंतर होना चाहिए,
बिल्कुल होगा अंतर, क्योंकि तीसरे नरक की जघन्य कॉमनली जघन्य आयु तीन सागर प्लस एक समय है, अभी इनकी यथायोग्य होगी। जैसे पहले नरक में हमने देखा मिनिमम आयु वहां की 10,000 है, परंतु समय दृष्टि वहां जाने वाले 84,000 वाले हैं, वैसे यथायोग्य होना चाहिए। उन्होंने कुछ अधिक और साधिक इतना बता के दोनों ओर से, साधिक तीन सागर में तीन सागर से, क्योंकि दूसरे नरक की आयु से थोड़ा ज्यादा है, और वहां उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है, परंतु साधिक तीन सागर कहने से चार सागर तो नहीं है, इतना तो बताना था। देखो सातवीं पृथ्वी में पहले छह नरक की बात उन्होंने बता दी, अब सातवीं की अलग से बात कर रहे, उसमें किस प्रकृति में क्या डिफरेंस होगा? नारकियों के ओघवध जानना चाहिए। विशेष यह है कि दर्शनावरण तीन, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चार, और तिर्यंज गति त्रिक का, यानी तिर्यंज गति गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र का, जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है। अभी लक्ष्मी जी आप बताना ही है क्यों जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त क्यों कहा? शांति रखो आपको नहीं। हाँ नहीं नहीं अंतर्मूर्त क्यों कहा? बाकी अन्य जगह एक समय कहा था, सासादन में मरण नहीं होता, ये कारण है। सासादन में मरने वालों का एक समय घटित होता है। मिथ्या तो ठीक है, कहीं पर भी अंतर्मूर्ति होता है, परंतु अन्य प्रकृतियों के लिए जो सासादन में एक समय की बात थी वो यहाँ घटित नहीं होती। सासादन में मरण ही नहीं है, सातवें गुण सातवें नरक वाले का मिथ्यात्व में ही मरण है, सासादन में कोई मरता नहीं। छठे तक सासादन में मरण था, तो वहां एक समय घटित किया था स्थान वृद्धि और अनंतानुबंधी के लिए। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी उच्च गोत्र का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। देखो इनका जघन्य काल क्योंकि जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक सम्यक्त्व में रह सकता है, और उत्कृष्ट तो नारकियों का हो गए ने कुछ कम 33 सागर, वो तो नारकी इन जनरल में बता चुके थे, वो तो एक लाइन में उन्होंने बता दिया था, उसमें बोलो जरा। मिथ्या दृष्टि बांधता ही नहीं है, बांधने वाला सम्य दृष्टि है, तो सम्यक तो का मिनिमम काल लेना है। हाथ में लेते ही उनको उत्तर मिल जाता है, तो आप हाथ में पकड़ के ही लिखो। हाँ यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, यानी चौथे पांचवें छठे सातवें में कहीं पर भी नहीं है। अब ये हो गया ना, ये नारकी की बात हुई, अभी तिर्यंचों में हमको देखना है। पहले तिर्यंचों में यानी तिर्यंच इन जनरल बात करेंगे, और फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, योनिमति और लब्धि अपर्याप्त, इस तरह से उसके भेद बाद में बताएंगे। देखो तिर्यंचों में, अब तिर्यंच ऐसा सोचना, अभी यहाँ तो पांच गुणस्थान है, तो यहाँ पांच गुणस्थान है तो पांचों तक बंधने वाली जो प्रकृति है जिसको हम वहां तक जो ज्ञानावरण वगैरह जो है, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम काल तिर्यंचों में कैसे सोचना है? तो तिर्यंचों की जघन्य आयु कितनी है? शुद्र भव। और मैक्सिमम आयु कितनी है? तिर्यंच की है, पंचेंद्रीय तिर्यंच की नहीं, तिर्यंच एक केंद्रीय तिर्यंच है ना, असंख्यात दुर्गल जो सब बांधते हैं इसी बातें लेंगे। देखो हम पढ़ेंगे अभी, पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, मिथ्यात्व, आठ कषाय, आठ कषाय को लिया असंख्यात पुद्गल परावर्तन, बाकी भी वो बांधेंगे अनंतानुबंधी को, परंतु यहाँ तो ये तो सभी बांधते हैं ना, सभी तिर्यंच बांधते हैं ऐसे लिए। भय जुगुप्सा, ना ना पहले दो छोड़ गए ना, प्रत्याख्यान संज्वलन रखा, वो तो सभी बांध रहे हैं ना। हाँ यहाँ यहाँ प्रत्याख्यान और संज्वलन को लिया है। भय जुगुप्सा, तेजस कारमाण शरीर, वर्ण चार, अगुरु लघु उपघात निर्माण, ये परघात उच्छ्वास को छोड़ा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जी तो उसको अंतर्मूर्त में बांधेगा नहीं बांधेगा, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त बांधता रहेगा इसलिए। निर्माण और पांच अंतरायों का, जघन्य से बंधकाल, क्षुद्र भोग्रहण यानी मिनिमम आयु लिया तिर्यंच की, यानी अन्य पर्याय से इसमें आया, यानी मनुष्य में से वो लब्धि पर्याप्त तिर्यंच हुआ शुद्रभ वाला, और उत्कृष्ट से अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल। अब स्त्यान वृद्धि त्रिक अनंतानुबंधी आदि आठ कषाय तथा औदारिक शरीर का चाहिए, शरीर में नहीं शरीर का भी इसी प्रकार समझना चाहिए। विशेष यह है यहाँ जघन्य बंध का लेक समय है। इस स्थान वृद्धि त्रिक अनंतानुबंधी हमने देखा था, तिर्यंच भी सासाधन में आ गया है। हाँ, एक समय में बंद करके मर गया, मरकर अन्य गति में भेजना चाहिए, मरकर तिर्यंच में जाने वाला नहीं लेना है, क्योंकि तिर्यंच में हमको एक समय घटित करना है। तो तिर्यंच सम्यक्त्व में था औपशमिक में से, और फिर वो सांसाधन में आया, इसका एक समय तक बंध किया और अन्य गति में चला गया। अन्य गति में उसका बंध हो रहा है, पर वो तिर्यंच के रहते हुए एक समय के लिए बंध किया, मार्गणा में रहते हुए चाहिए। औदारिक शरीर ऐसे भी प्रतिपक्ष प्रकृति है। हाँ, असंगी पंचेंद्रिय को भी लेना, केवल असंगी को क्यों लेते, पंचेंद्रिय कहो उसमें संगी असंगी दोनों आ गए। तिर्यंच में उसने बंद किया ना, अभी आठ कषायों को घटित करो। हाँ, उसमें बोलो।
के लिए तो समझ गए कि
वही मेरा प्रश्न था, मैंने वही पूछा आपको, अप्रत्याख्यान घटित करो। एक समय ऐसा मरता नहीं एक समय में, अरे पांचवे से सासाधन में गया। अरे तिर्यंच है ना, ये सातवें से कोई नहीं जाता, मनुष्य छठे से जा सकता, सातवें से मत करो, छठे से। प्रथम अक्षर सहित पांचवे में था। क्योंकि हम स्थान वृद्धि के साथ अनंतानुबंधी के ले रहे हैं, तो प्रश्न है तो अप्रत्याख्यान को क्यों लिया, तो पांचवे से दूसरे में आया। हाँ देखो देखो,
पांचवे से चौथे में जाएगा तो भी अंतर्भूत तत्काल भी मरेगा,
तत्काल मरण होगा नहीं, नहीं तो एक समय कह देते ना, वैसे उस अपेक्षा से एक समय नहीं, वो तो साधन की अपेक्षा एक समय है। हाँ देखो, विशेष है कि यहाँ जघन्य बंध काल एक समय हो गया ना। अब तिर्यंचों में साता असाता वेदनिया छह नौ कषाय, छह नौ कषाय में किसको छोड़ा, हाँ भैजुगुप्सा को छोड़ा और पुरुषवेद को छोड़ा, क्योंकि समय दृष्टि उसको लगातार लंबे काल तक बांधता रहेगा। यानी यह इसी प्रकृति मिथ्या दृष्टि के तो उसके तो प्रतिपक्षी है ही है, और इसका जो छोड़े है वो समय दृष्टि लगातार बांध रहा है, इसलिए हास्य का और हास्य शोक का युगल ले लिया, यानी चार वो हो गए और श्रीवेद नपुसक वेद लिए। ख्याल में आ रही है बात, दो गति। अब लक्ष्मी दो गति कौन सी होगी, क्योंकि आगे चलकर ये बताने वाले हैं एक समय से अंतर्मूर्त है मनुष्य और नर की, लिखा है ना वहाँ। ये सोचकर बता रहे, लास्ट टाइम लिखा था। हाँ, मनुष्य गति और नर की नरक गति। देखो देखो, नरक गति, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, एक समय से अंतर्मूर्त बताना है, तिर्यंच समय दृष्टि तो देवगति लगातार बांधता रहेगा, और तिर्यंचों में अग्नि का एक वायु का एक है वो तो असंख्यात लोक प्रमाण तक काल तक तो तिर्यंच गति बांधती रहेगी, तो उत्कृष्ट हम अंतर्मूर्त नहीं कह सकते उसके लिए। इसलिए यहाँ उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त किस में घटित होगा, तिर्यंचों के लिए मनुष्य गति में और नरक गति में। लगातार तिर्यंच गति बांधेंगे अग्नि का एक वायु का एक तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक बांधेंगे, हमें अंतर्मूर्त की बांधनी चाहिए इसी लेना है। हाँ देखो चार जाति, क्योंकि समय दृष्टि पंचेंद्रीय जाति लंबे काल तक बांधेगा, पांच संस्थान औदारी कंगोपांग, समय दृष्टि हुआ तो वैकृत अंगोपांग बांधेगा, औदारिक अंगोपांग का यानी वो एक इंद्रिय जाति के साथ नहीं बांधता है, अन्य जाति के साथ बांधता रहता है, इसलिए उसको ऑप्शनल में लिया। छह सहनन, क्योंकि समय दृष्टि होने पर सहनन बांधेगा नहीं देवगति के साथ, इस छह सहननों को ऑप्शनल में लेना है। दो अनुपूर्वी यानी मनुष्यानुपूर्वी और नारकानुपूर्वी, आतप उद्योत अप्रशस्त विहाय गति स्थावर आदि चार, तिर्यंचों की बात चल रही है ना। हाँ स्थिरादि दो युगल यानी स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, यश ऐश बाद में रखेंगे, स्थावर स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, त्रस को नहीं लेना है ना, समय दृष्टि त्रस की लगातार बांधता रहेगा, उसके अपोजिट वाले लेना। हाँ त्रसादि में वो युगल में से वो अप्रशस्त वाली लेना है। स्थावर सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त,
ये पांच
संस्थान में एकदम समचतुरस्र को छोड़ का, क्योंकि समय दृष्टि देवगति के साथ उसको बांधता रहेगा लंबे काल तक। देखो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ दोनों को लेना, क्योंकि पांचवें गुण स्थान वाला भी दोनों को बांधता रहेगा अल्टरनेटली। दुर्भग दुस्वर अनादेय को ही लेना, परंतु यश ऐश दोनों को लेना, क्योंकि अयश की बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक वो ऑप्शनल है, प्रतिपक्षी है, इसलिए इसमें से स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यश ऐश तीनों को यानी तीन युगल को लिया और दुर्भग दूसरा अनादेव को लिया। इसका जघन्य बंध काल एक समय है, क्योंकि ये प्रतिपक्षी है एक समय तक बन सकती है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, ये समझ में है ना ये क्यों लिया है। अब जो समय दृष्टि है तो जब तिर्यंच में सम्यक तो लंबे काल कितने काल तक रहेगा तो उसका वो बंधक काल उतना कहेंगे। हाँ देखो पुरुष वेद देवगति वैकृत शरीर समचतुर संस्थान वैकृत अंगोपांग देवानुपूर्वी प्रशस्त व्याय गति सुभग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का जघन्य बंध काल एक समय है और उत्कृष्ट तीन पल्ले है। हाँ क्षायिक है क्योंकि उसमें अपर्याप्त अवस्था में भी इसी का ही बंध किया था। चार आयु और तिर्यंच गति त्रिक का ओग के समान जानना चाहिए, चार आयु का अंतर्मूर्त है और तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्य और निज गोत्र का असंख्यात लोक होना चाहिए। आपको बाजू में लिखना है तो लिखो, क्योंकि ओग की रचना हमारी चली गई थी ना, चार आयु के लिए अंतर्मूर्त लिखना है और तिर्यंच गति त्रिक के लिए असंख्यात लोक, वो असंख्यात लोग की साइन करो चलेगा। देखो देवगति आदि को लिया परंतु कुछ प्रकृतियां यहां साधिक में लिए, कौन से देखो पंचेंद्रिय जाति परघात उच्छ्वास त्रसादी चार जो त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक जघन्य एक समय, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसके तो प्रतिपक्ष में इसको भी ले सकते हैं मिथ्या दृष्टि के लिए, तो एक समय घटित हो सकता है। परंतु उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य कहा, लक्ष्मी आप बताएंगे साधिक तीन पल्य क्यों कहा? पहले ने कब वंथर पूर्वकोटि मनुष्य को नहीं लेना है, हमको हमको तीर्यंच लेना है, तीर्यंच तीर्यंच में जाएगा, तो तीर्यंच वंथर पूर्वकोटि बांधेगा तो लगातार थोड़ी उसको बांधेगा, मिथ्या दृष्टि है ना वो, आप बताएंगे। हाँ तीर्यंच तीर्यंच में, तो देखो देखो जाने के पहले अंतर्मूर्त वो पंचेंद्रिय जाति का ही बंद करेगा कि नहीं करेगा, हमने देखा ना जहाँ जाता है उसी का वो तीर्यंच गति और भोगभूमि पंचेंद्रिय जाति का बंद करेगा, यानी अंतिम अंतर्मूर्त में उसने पंचेंद्रिय जाति का ही बंद किया, भले मिथ्या दृष्टि है भोगभूमि की आयु बांध चुका था, अंत में उसके पंचेंद्रिय जाति का ही बंद होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय में उत्पन्न होना है तो पंचेंद्रिय जाति का पहले भाव में ही बंद करता है वो, ये सब ऐसे ही प्रकृतियां परघात उच्छ्वास त्रस वगैरह वगैरह, इसलिए साधिक तीन पल्य, यानी कर्म भूमि का वो तीर्यंच है, मिथ्या दृष्टि ने आयु बांधी है और तीर्यंच तीर्यंच में उत्पन्न होने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, उसमें सम्यक्त्व का सवाल ही नहीं है। ऊपर जो हमने प्रकृतियां देखी थी वो मनुष्य शायिक सम्य दृष्टि होकर तीर्यंच में जाने वाला देखा था, इसलिए पूरे तीन पल्य प्रमाण उसने, क्योंकि आप कहेंगे पुरुष वेद भी पहले जाने के पहले बांध रहा था, पर वहां तो क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य था वो जिसने पहले तीर्यंच आयु बांधी थी, इसलिए तीर्यंचों में पुरुष वेद का बंधन लगातार तीन पल्ले ही लिया, साधिक लिया नहीं उसको। पहले मनुष्य भी देवगति बांध रहा था पर वो मनुष्य में था, ये तीर्यंच होने पर उसने देवगति बांधी इसलिए उसको तीन पल्ले ही लिया। अगर मनुष्य से मनुष्य में जाता है तो साधिक तीन पल्ले लगाएंगे। हाँ शाही कैसे होगा?
नहीं
वो मिथ्या तो में ही जाता है, भूमि के आयु तो मिथ्या दृष्टि बांधते, मिथ्या दृष्टि बांधते हैं, और आयु बांधने के बाद मनुष्य वो क्षाई कर सकता है तो सम्यक्त्व लेके जाएगा, यानी भूमि में जाने के लिए सम्यक्त्व की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ समय तो लेकर कौन जा सकता है? मनुष्य जो क्षायिक हो जाएगा वो जा सकता है, कृतकृत्य वेदक भी जाता है पर वो क्षायिक चल रहा है ना उसका।
पहले ऐसा
हाँ मनुष्य ने मनुष्याई बांधी, हाँ तब जाके और क्षायिक हुआ तो वो क्षायिक के साथ जाएगा, तीर्यंच क्षायिक कर ही नहीं सकता है। हाँ जो जिस मनुष्य ने तीर्यंच आयु बांधी है वो मनुष्य ने पहले यहाँ क्षायिक किया मनुष्य के साथ और वहां का वो तीर्यंच हुआ क्षायिक समय दृष्टि। हाँ तो क्षायिक समय के साथ तीर्यंच बस केवल तीन पल्ले तक ही रहेगा, मनुष्य ने क्षायिक प्राप्त किया और वो अभी तीर्यंच हुआ है, उसका क्षायिक तो क्षायिक ही रहने वाला है, वो तीर्यंच। हाँ हाँ ये साधिक तीन पल्ले क्यों कहा समझ में? ये प्रकृतियां मिथ्या दृष्टि भी वहां जाने के पे एक अंतर्मूर्त पहले इनका बंद कर रहा था इसलिए इनको लिया, तो तीर्यंच मरकर तीर्यंच तीन पल्ले वाला हुआ है ऐसा ये जीव लिया। अब ये तो हमने तीर्यंच इन जनरल में देख लिया, अभी हमारी जो अंतर्मूर्ति जगन में छोटा अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट में थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त। देखो तीर्यंच इन जनरल है तो अग्निकायिक और वायुकायिक जीव लगातार तीर्यंच गति का ही बंद करते, वो मनुष्य गति बांध ही नहीं सकते। जघन्य में तो हमने देखा था एक समय, तो हमने देखा वो प्रतिपक्षी ऐसी है और उत्कृष्ट अग्निकायिक वायुकायिक की अपेक्षा, क्योंकि अग्निकायिक में लगातार रहा वायुकायिक में लगातार रहा तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहा, तो लगातार उसने तीर्यंच गति बांधी है और वहां से निकला पंचेंद्रिय में कहीं अन्य कायिक में, वहां भी शुरुआत में तो तीर्यंच गति बांधी, ऐसा ही ले सकते हैं। असंख्यात लोक में वो भी इंक्लूड कर दो। अभी तीर्यंचों की एक उसका एक भेद कौन से, पंचेंद्रिय तीर्यंच। जब पंचेंद्रिय तीर्यंच कहते तो उसमें संगी भी आए, असंगी भी आए, पर्याप्त भी आए और अपर्याप्त भी आए। दूसरा भेद है पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्तक, यानी यहाँ अपर्याप्तों को नहीं लेना है। और पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिमति, केवल स्त्री वेदी लेना, संगी असंगी दोनों ले सकते हैं। डिफरेंस कहाँ पड़ता है, एक तो योनिमति में सम्यक के साथ कोई उत्पन्न नहीं होता, एक बात, और उनमें रहने का लगातार काल अलग अलग होगा। पृथक्त्व पूर्व कोटि तो जिन जनरल कथन है, पन तीर्यंच कहने से, पंचेंद्रिय तीर्यंच कहने से, वो तो स्त्री वेदी के आठ भव, नपुसक वेदी के आठ भव और पुरुष वेदी के आठ भव, संगी के भी आठ और असंगी के तो 16 ये हो गए। फिर बीच में एक लब्धि अपर्याप्त का भव, और फिर वहां हो जाते उतने। हाँ, इस तरह से हमने देखा ना बीच बीच में, न तीन पल्ले लेना है तो 95 लेना है। देखो आठ त्रिक 24 हो जाते ना, 24 और 24 48 हो गए, संगी के भी और असंगी के मिलकर, तो टोटल 96 भव हो सकते हैं। उसमें से अंतिम भव उसको तीन पल्ले का करना है, 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले, ये पंचेंद्रिय तीर्यंचों का होगा। और पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्तों के लिए, वो बीच में अपर्याप्त नहीं ले सकते हम। 47 और तीन पल्ले, और योनिमति में अभी संगी के और असंगी के आठ और आठ 16 ही भव हो गए, 15 पूर्व कोटि और तीन पल्ले लेंगे। देखो अभी हम यहां से पढ़ते, देखो पंचेंद्रिय तीर्यंच, पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिमति में ओग के समान जानना चाहिए। अब जहां डिफरेंस है उसको बताएंगे। प्रथम दंडक में जघन्य बंधकाल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, ये किसमें होगा, ऊपर जो हमने तीन भेद देखे उसमें से, हाँ पंचेंद्रिय तीर्यंच में होगा, हाँ। और पंचेंद्रिय तीर्यंच पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त और योनिमति में कितना होगा, अंतर्मूर्त होगा। तो ये बीच में जो फुल स्टॉप दिया है वो निकाल दो, यानी प्रथम दंडक में जघन्य बंधकाल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, तो ये प्रथम दंडक में के बाद अपने समझने के लिए वहां एरो करके डालो, प्रथम दंडक में पंचेंद्रिय तीर्यंच में ये जघन्य बंधक क्षुद्र भव सबके लिए नहीं है, क्योंकि पर्याप्तकों में क्षुद्र भव नहीं होता, योनिमति में क्षुद्र भव नहीं होता, उनका छोटे में छोटा भव अंतर्मूर्त का होगा। तो ये फुल स्टॉप निकाल दो, कॉमा लगा लो। तो अभी हम फिर पढ़ती हूँ मैं, प्रथम दंडक में पंचेंद्रिय तीर्यंच में जघन्य बंधकाल क्षुद्र भव ग्रहण, क्योंकि उसमें अपर्याप्त संभव है इसलिए, कॉमा तीर्यंच पर्याप्तक तथा योनिमतियों में अंतर्मूर्त, क्योंकि उनकी मिनिमम आयु अंतर्मूर्त की। अब तीनों के लिए उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले प्रमाण बंधकाल है। अभी हमने पूर्व कोटि पृथक्त्व में किसको कितना लेना, तो पंचेंद्रिय तीर्यंचों में हमने 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले सबके लिए लगा लेना। फिर पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्तों में 47 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले, और योनिमति में हाँ 15 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले। अब विशेषार्थ, एक देव, नारकी, मनुष्य अथवा विवक्षित पंचेंद्रिय तीर्यंच से विभिन्न अन्य तीर्यंच मरकर पंचेंद्रिय तीर्यंच हुआ, क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय तीर्यंच हमारी मार्गणा है, तो ये मार्गणा कब शुरू हुई, अन्य पर्याय से इसमें आएगा तब, अन्य पर्याय में देव ले, नारकी है, मनुष्य है, या पंचेंद्रिय तीर्यंच के लिए एक इंद्रिय से आए हुए जीव को भी हम पंचेंद्रिय तीर्यंच में अभी आया ऐसा कहेंगे, ये उसका अर्थ होता है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय से आया हुआ विवक्षित पंचेंद्रिय तीर्यंच हुआ, विवक्षित यानी ये तीन में से, जो विवक्षित ऊपर जो तीन भेद बताए उसमें से, वहां संगी स्त्री पुरुष नपुसक वेदों में क्रम से आठ आठ पूर्व कोटि काल व्यतीत करके तथा असंगी स्त्री पुरुष नपुसक में पूर्ववत आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल क्षेप करके पश्चात लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। वहां अंतर्मूर्त रहकर पुनः पंचेंद्रिय तिर्यंच असंगी पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर उनमें के स्त्री पुरुष नपुसक वेदी जीवों में पुनः आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल व्यतीत करके पश्चात संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त स्त्री और नपुसक वेदियों में आठ आठ पूर्व कोटियां तथा पुरुष वेदियों में सात पूर्व कोटियां भ्रमण करके पश्चात देवकुरु व उत्तर कुरु में यानी उत्तम भोग में तिर्यंचों में पूर्व बद्धायु के वश पुरुष या स्त्री तिर्यंच हुआ तथा तीन पल्योपम काल व्यतीत करके मरा और देव हुआ। उसकी तिर्यंच पर्याय बदल गई तो विवक्षित वहां रहने का कितना कितना काल वो हमने अभी देखा। इस प्रकार पूर्व कोटि पृथक वर्ष अधिक तीन पल्य कहे हैं। समझ में ना, हमने तो डिराइव करके देखा था अभी। ओग के समान जो हमने देखा ना पांच ज्ञान और छह दर्शन वगैरह वो सब उसमें असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा था उसके बदले में हाँ ये जगन्य में क्षुद्रभव और अंतर्मूर्त तीनों के लिए अलग अलग क्षुद्रभव अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट सबके लिए हाँ पूर्व कोटि पृथक अधिक तीन पल्ले। अब 57 पे समझ में आती है बात नीचे से हाँ नीचे नीचे का दूसरा दूसरा जो है ना पॉइंट फुटनोट दूसरी यहाँ 12 भवों में से 11 भवों में पूर्व कोटि पृथक वर्ष अर्थात आठ आठ पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण का काल और अंत के 12वें भव में सात पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण करने का काल मिलकर 95 पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण होता है। इस काल को पूर्व कोटि पृथक शब्द से ग्रहण किया है। बारह भव समझते हैं? बारह भव कैसे हैं? स्त्री की नपु बोलो बोलो क्योंकि संगी असंगी के ऐसे संगी संगी के और असंगी के स्त्री के पुरुष के नपुसक के इस तरह से ऐसा नहीं उसको एक 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 पूरा ले लो ना यानी आठ पूर्व कोटि का एक ग्रुप बनाओ ना बारी अठी शान्य होता है ना हाँ देखो एक में आठ पूर्व कोटि ऐसे बारह हो गए ना एक में आठ पूर्व कोटि ऐसे बारह इन बारह ठिशाना हो जाते हैं हाँ देखो देखो पेज नंबर 57 फुट नोट नीचे से एक दो तीन चौथी लाइन दो आंकड़ा लिखा है ना यहाँ 12 भवों में से 11 भवों में पूर्व कोटि पृथक यानी आठ आठ पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण काल है और अंत के 12वें भव में वो स्त्री कहो पुरुष जो कोई है तो आठ में से सात पूर्व कोटि हो गए हाँ यानी एक लगातार आठ पूर्व कोटि का एक ग्रुप हमने बनाया ऐसे 12 ग्रुप है तो 12 96 हो जाते हैं उसमें से 11 हो गए हाँ तो 11 88 हो गया और फिर उसमें से सात हो गए तो 95 हो जाते हैं। ये तो हमने देखा वैसा ही उन्होंने अलग पद्धति से उसको बताया। अभी हम ऊपर चलते हैं विशेषांक के नीचे के दो लाइन है लास्ट इसी प्रकार स्त्यान वृद्धि त्रिक तथा आठ कषाय का भी जानना चाहिए, विशेष इतना यह है कि यहाँ जघन्य एक समय है सासादन में। यानी उत्कृष्ट की अपेक्षा उन्होंने वो बताया और वहां हमने उत्कृष्ट ओग में उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परावर्तन देखा। आठ कषाय में किसको लेना? हाँ, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। साता दंडक में तिर्यंचों के ओघवत जानना चाहिए। साता दंडक में हमने सभी वो जो प्रतिपक्षी वाली ली थी और मिथ्या दृष्टि जो बांधता है वो समय दृष्टि जिन प्रशस्त को तो उसको छोड़कर बात की थी। हाँ, एक समय से अंतर्मूर्त। अब आने 58 पेज पर। अब ये तो हमने तिर्यंच अतिरिक्त को छोड़ा था वहां पर साता दंडक में और उसको असंख्यात लोक प्रमाण काल देखा था। पंचेंद्र तिर्यंचों में कितना होगा उत्कृष्ट काल? तिर्यंच गति त्रिक काल तिर्यंच गति बांधता रहेगा, ये उदय नहीं चल रहा है। अंतर्मूर्त, एक समय से अंतर्मूर्त, यानी उसको साता दंडक में इंक्लूड करना है, बस ये बात है। तिर्यंचंग का जो ओघ था तो उसमें अग्नि का एक वायु का एक बांध रहे थे असंख्यात लोक प्रमाण काल तक। अब पंचेंद्रिय कहने से उसमें वो बात नहीं है। पंचेंद्रिय जीव तिर्यंच गति का बंध कौन करेंगे? तो पहले दूसरे गुणस्थान वाले करेंगे और वो भी अल्टरनेटली मनुष्य गति के साथ करेंगे। प्रतिपक्ष है वहां पर अन्य भी गतियां, सारो गति है मिथ्या दृष्टि के लिए। तो कहते यहां देखो, तिर्यंच गति त्रिक तथा औदारिक शरीर में विशेष जानने ने ओग से डिफरेंस जानना। ओग में असंख्यात लोग कहा था, औदारिक शरीर के लिए तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा था, तो इसमें एक समय से अंतर्मूर्त कहना है क्योंकि सम्यक तो होने पर वो तो वैकृत शरीर लगातार बांधेगा और तब तक उसके तो अल्टरनेटली वैकृत शरीर और औदारिक शरीर बंध रहा है। ख्याल में आई ना बात? विशेष है ओग से डिफरेंस जानना बस इतना। क्या डिफरेंस है? एक समय से अंतर्मूर्त लेना यहाँ पर। हाँ, पुरुष वेद दंडक का तिर्यंचों के ओघवत है क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच जब कहते हैं तो पूर्व कोटि जो हमने देखा था उसमें भी घटित हो जाएगा। इतना विशेष है कि यानी तिर्यंचों में पुरुष वेद का किसने देखा था? तीन पल्ले देखा था, पूरा तीन पल्ले देखा था पुरुष वेद के लिए ओग में। और यहाँ योनिमति में, अभी योनिमति के साथ वो क्षायिक के साथ उत्पन्न नहीं होगा तो वहां जाने के बाद सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो कुछ कम तीन पल्ले। इतना विशेष है कि योनिमति तिर्यंचों में कुछ कम जानना चाहिए क्योंकि पुरुष वेद दंडक जो तिर्यंचों के इन जनरल लिया था, हमने तो पूरा का पूरा तीन पल्ले देखा था क्योंकि क्षायिक के साथ उत्पन्न होने को लिया था। योनिमति में कोई सम्यक्त्व में उत्पन्न नहीं होगा इसलिए कुछ कम तीन पल्ले लेना पड़ेगा। चार आयु का बंध काल ओग के समान है यानी अंतर्मूर्त। पंचेंद्रिय दंडक में तिर्यंचों के ओघवत है, हमने देखा ना साधिक तीन पल्ले देने यानी अंतर्मूर्त अधिक करना क्योंकि भले योनिमति उसमें भोगभूमिका स्त्री हुआ या कोई भी जो तीनों में से, तो उसमें जाने के पहले अंतर्मूर्ति उसने बंध किया था उसका। फिर से
भोगभूमि में पृथक तो बांध छोड़ना पड़ेगा ना?
किसका?
पुरुष वेद का लगा।
क्या क्या क्या
भोगभूमि में तिर्यंच उत्पन्न होगा?
हाँ।
तो सबने तो वो पृथक तो मास के पश्चात प्राप्त करेगा क्योंकि हम लोग अंतर्मूर्त लेते हैं, वो तो हम लोग कर्मभूमि के लेते हैं।
फिर से
पुरुष वेद का लगातार बंद,
पुरुष वेद का लगातार बंद कुछ कम
भोग भूमि में कुछ कम तीन पल्ले
कुछ कम तीन पल्ले
वहाँ पे पृथक तो मास छोड़ना पड़ेगा ना?
हाँ, जो यथायोगी जब सम्यक तो प्राप्त करती उसकी अपेक्षा से। अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त, यानी वहां जाने पर सम्यक तो प्राप्त करने के लिए जितना, क्योंकि वो तो गर्भ का काल भी छोड़ना पड़ेगा और बाद में भी कुछ समय छोड़ने पड़ेंगे। अरे बाबा, अपन कर्मभूमि के गर्भज नहीं है, वो तो अंतर्मूर्त जो लेते हैं वो सम्मूर्छनों में लेते हैं, यहाँ भूभूमि में कोई सम्मूर्छन नहीं होते। हाँ, यानी वहां जाने पर जब समय दृष्टि हुआ तो ये कुछ कम में आ गया वो समय। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों में, अभी लब्धि अपर्याप्तों में लगातार रहने का काल कितना, एक शूद्र भो मिनिमम और मैक्सिमम अंतर्मोल। तो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, अभी एक ही मिथ्या तो गुणस्थान है। मिथ्या तो 16 कषाय, भय जुगुप्सा, औदारिक तेजस कारमान शरीर, वर्णादि चार, अग्रु लघु उपघात निर्माण तथा पंच अंतरायों का, ये सब ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। बंधकाल जघन्य से क्षुद्र भव और उत्कृष्ट से अंतर्मोल। मनुष्य तिर्यंच आयु का बंधकाल उगवत, यानी अंतर्मूर्त होता है, कहीं पर भी जाओ आयु का बंधकाल अंतर्मूर्त होगा। शेष का, शेष में प्रतिपक्षी प्रकृतियां लेना, जघन्य बंधकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष जो है वो सभी बनती रहेगी अंतर्मूर्तन। इस प्रकार संपूर्ण अपर्याप्त त्रसों तथा स्थावरों में जानना चाहिए, यानी त्रस अपर्याप्त, स्थावर के सभी अपर्याप्त, यानी अन्य अन्य कायिकों में अपर्याप्त में यही बात होगी और सभी स्थावरों में भी ऐसा ही होगा, अपर्याप्तकों में ले लेना। यानी कोई भी काय वाले हो, अपर्याप्त अवस्था अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगी, इस तरह से लेना। अब मनुष्यों की बात करेंगे, मनुष्य इन जनरल, मनुष्य सामान्य, मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यनियों में पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस कारमन शरीर, वर्णचार, अग्र लघु उपघात निर्माण तथा पांच अंतरायों का, जघन्य बंद का लेख समय, अन्य किसी गति में नहीं लिया था। प्रतिभा ही आप बताओ, एक समय कैसे हुआ? हाँ हाँ, ध्रुवबंदी है। हाँ तो मनुष्य को भोगभूमि में अकेले भेजते हो कहीं पर? भोगभूमि का सवाल कहाँ है यहाँ पर? वो तो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट की बात छोड़ो, एक समय कैसे घटित हुआ? ब्रह्मा सासाधन में तो यार, सासाधन में आने वाला चौथे पांचवे में भी बांध रहा था ना, श्रेणी उतरते समय। देखो, ग्यारहवे वाला बंद नहीं कर रहा था, दसवें में आते ही बंद शुरू हुआ है उनका, जिनका जहां हुए वो। अभी तेजस कारमान के लिए आठवें में बंद कराना है, यानी बंद विचित्र हुई थी उस वहां तक आ गया, एक समय के लिए बंद करके मर गया तो देव में ही जाने वाला है, तो उसकी गति बदली ना, तो उसके मार्ग ना बदल हो गए। हाँ देखो देखो, यानी श्रेणी उतरते समय एक समय का बंद करके मर गया, इस तरह से लेना। अलग अलग पोजिशन पर होगा इसका। पांच ज्ञानावरण तो दसवें में आते ही चालू हो जाएगा, चार दर्शनावरण भी दसवें में ही बनते हैं। हाँ, फिर नीचे आएंगे, कषाय में भी पहले लोभ हुआ, फिर माया लोभ हुआ, इस तरह से जहाँ जो है उसकी बंद विच्छित, जहाँ समाप्त हुई थी उसकी शुरू हुई, बंधना शुरू हुआ उतरते समय, तब लेना उसको। तो जघन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य। अभी मनुष्यों में लेना है, तिर्यंचों में संगी असंगी दो थे, अब मनुष्यों में तो आठ 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 लेना है, 24, फिर अपर्याप्त का भाव, फिर 24। यानी 48 में से एक कम करो, 47 पूर्व कोटि और 3 पल्य। ये किसके लिए? सामान्य मनुष्य के लिए। मनुष्य पर्याप्त कहेंगे तो अभी बीच में अपर्याप्त का भाव नहीं ले सकते, तो 24 ले सकते हैं, 24 में से एक कम, 23 पूर्व कोटि और हाँ। ये मनुष्य पर्याप्त कहने से कभी कभी पुरुष और नपुंसक वैदिक को ही लेते हैं और कभी कभी तीनों को लेते हैं, वो अपेक्षावश कथन है। परंतु मनुष्य नहीं में तो 8 ही भव लेना, उसमें से 7 पूर्व कोटि और 3 पल्य लेना। सबके लिए सामान्य कथन क्या है? पूर्व कोटि पृथक्त्व। देखो सामान्य के लिए 47, सामान्य के लिए 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य, नीचे लिखा है। देखो नीचे एकदम लास्ट अंतिम पैराग्राफ है ना, यहाँ यह विशेष है कि मनुष्य मिथ्यात्विके, मिथ्या दृष्टि है ना, समय को होने पर वो लगातार मनुष्य में नहीं रहेगा। 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य है, पर्याप्त मिथ्यात्वी मनुष्य के 23 पूर्व कोटियाँ अधिक है, यानी 24 में से एक कम कर दें। मनुष्य ने मिथ्या दृष्टि के 7 पूर्व कोटि अधिक है, अधिक में वो 3 पल्ले अधिक में रखना है। और वैसे उन्होंने बीच प्राकृत का ही वाक्य यहाँ लिख दिया, मनुष्य मिच्छा इच्छिस चेय सत्तताल पूर्व कोटियो अहिया होती। सत्तताल ने 47, पज्जत मिच्छा दिठ्ठीनम 23 पूर्व कोटियो, और मनुष्यनी मिथ्या दिठ्ठीसु सत्त पूर्व कोटियो अहियाओ, अधिक में 3 पल्य ले लेना। हाँ ये हो गया ना। इसी प्रकार मिथ्यात्व का भी बंध काल है, इतना विशेष है कि मनुष्य सामान्य में जघन्य बंध काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनी में जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब ये जो अंतर्मूर्त है जघन्य, वो मिथ्या तो में रहने का काल लेना है कि उनकी जघन्य आयु लेना है? दोनों के लिए अंतर्मूर्त ही कहेंगे। साता वेदनीय, चार आयु का बंध का लोगवत जानना चाहिए, कितना होगा? अभी साता वेदनीय को जो अभी हमने करेक्शन करवाया था उग में, हाँ मिनिमम तो एक समय क्योंकि प्रतिपक्षी है, और मैक्सिमम अभी सातवें गुणस्थान से ऊपर क्षपक शनि चढ़ के 13वें में जाके रहे तो कुछ कम पूर्व कोटि, यानी हर एक का अलग अलग है। चार आयु का तो अंतर्मूर्त है और साता वेदनीय का कुछ कम पूर्व कोटि है। असाता वेदनीय छह नौ कषाय। देखो अन्य अन्य गतियों में तो साता और असाता अंतर्मूल से ज्यादा नहीं बंधेगी, मनुष्य में ये संभव है। असाता वेदनीय छह नौ कषाय, ये पुरुष वेद और भैजुगुप्सा को छोड़कर बात है। तीन गति चार जाति औदारिक शरीर, तीन गति में कौन से लेना? ब्रह्मा देवगति को, क्योंकि समय दृष्टि मनुष्य देवगति का ही बांध करता रहेगा लगातार, बाकी जो है उसके पहले दूसरे गुणस्थान में बनती है तो वहां उसके लिए ऑप्शनल है वहां पर। चार जाति औदारिक शरीर, पांच संस्थान औदारिक अंगोपांग, छह सहनन, तीन अनुपूर्वी आतप उद्योत अप्रशस्त विहाय गति स्थावरादि चार, स्थिरादि दो युगल दुर्भग दुस्वर अनादेय यशकीर्ति ऐशकीर्ति तथा नीच गोत्र का जघन्य बंध काल एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, क्योंकि प्रतिपक्षी है और जो प्रतिपक्षी शुभ प्रकृतियां जो सम्य दृष्टि बांध रहा है उसको छोड़ा, अब उनको यहां ले रहे। पुरुष वेद, देवगति चार, समचतुर संस्थान, प्रशस्त व्याय गति, सुभग सुस्वर आदेय तथा उच्च गोत्र का जघन्य बंध काल एक समय, क्योंकि वो प्रतिपक्षी है। उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है, देखो तीरंच में भी साधिक तीन पल्य कहा था और यहां पर भी साधिक तीन पल्य कहा है। लक्ष्मी आप बताएंगे यहां कितना होगा, साधिक में कितना लेना पड़ेगा? हाँ, कितना देना पड़ेगा? वंतर पूर्व कोटि साधिक, क्योंकि उसने आयु बांधी है और फिर समय दृष्टि हुआ, समय तो होते ही उसके देवगति वगैरह बांध रहा, फिर यथा योग्य काल में क्षायिक हो गया और क्षायिक के साथ वहां गया है, यानी वो तो वंतर पूर्व कोटि प्लस तीन पल्य, वो तो कुछ कम समझ में आया। और तीर्यंचो में कैसे लिया था? तीर्यंच भोग्य में गया तो अंतर्मूर्ति हमने बढ़ाया था, वो साधिक में अंतर्मूर्त बढ़ाया था, यहाँ साधिक में करीबन वन थर्ड पूर्व कोटि बढ़ाया, कुछ कम इसलिए कि बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है आयु बंध के बाद, इसलिए कुछ कम। हाँ, वैकृक वैकृक अंगोपा देवगति देवगत्यानुपूर्वी चतुष्क, हाँ चतुष्क अभी मनुष्यनि में क्या होगा? देखो मनुष्य सामान्य में भी घटित होता है, मनुष्य पर्याप्त में भी घटित हो रहा है, मनुष्यनि में क्या होगा? सम्यक्त्व के साथ वो मनुष्य में उत्पन्न नहीं होगा, वहां जाने के बाद सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, तो कुछ कम तीन पल्ले होगा। हाँ। तो मनुष्यनि में देशों न तीन पल्ले, समझ में आ रही बात ये? हाँ। ये दो लाइन पढ़ लेते देखो। पंचेंद्रिय जाति परघात उच्छ्वास त्रश्चार का बंध काल तीर्यंचों के ओघवत है, यानी जघन्य उसका एक समय होगा और उत्कृष्ट वही साधिक तीन पल्ले होगा ना, साधिक तीन पल्ले। ये साधिक कथन तीर्यंच के समान है, परंतु साधिक में यहां उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया तब से पंचेंद्रिय जाति बांध रहे, इस तरह से ले सकते हैं उसको। वही वही साधिक साधिक तीन पल्ले ये कथन होगा जनरल में, तो उसमें साधिक में कुछ कम वंथर पूर्व कोटि ऐड करना, वंथर पूर्व कोटि नीचे लिखा है, एक मिनट देखते हैं। आहारक द्विक का जघन्य बंध काल एक समय है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है मनुष्यों में रहते हुए, एक समय कैसे हुआ? छठे से सातवें में जाकर एक समय में बंद करके मर सकता है, या श्रेणी उतरते समय आठवें में आया एक समय के लिए बंद किया फिर मर गया, यह भी हो सकता है। तीर्थंकर का जघन्य बंध काल एक समय, उत्कृष्ट पूर्व देशों पूर्व कोटि, यह भी उपशम श्रेणी से उतरते हुए एक समय, अरे चढ़ने वाले के पहले भाग में नहीं होता, उतरने वाले के होता है। हाँ यानी एक समय में बंद करके मरकर देव हुआ। देखो नीचे नीचे का पैराग्राफ फुटनोट में, पूर्व कोटि आयु के त्रिभाग में मनुष्य आयु को बांधने वाले मनुष्य ने अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त किया तथा सम्यक तो सहित भूभूमि में तीन पल्ले बिताए और मरकर देव हुआ, इस प्रकार साधिक तीन पल्ले है। कुछ कम तीन पल्ले प्रमाण मनुष्यकाल मनुष्यनियों में है, कोई मिथ्यात्वी मनुष्य भूभूमि में तीन पल्ले की स्थिति वाला मनुष्य हुआ, नौ माह गर्भ में बिताए, पश्चात 49 दिन में सम्यक तो लाभ किया, क्योंकि वो सात सात दिन की बात आती है ना, और सम्यक तो युक्त शेष तीन पल्ले पूर्ण कर मरा और देव हुआ, इस प्रकार 9 माह 49 दिन कम तीन पल्ले प्रमाण काल हुआ। एक्चुअली 49 दिन वो तो इन जनरल है ना, अभी उत्तम भूभूमि में तो ये 7 दिन का तो जघन्य भूभूमि का है, 5 दिन का तो मध्यम का और 3 दिन का इनका है मेरे ख्याल से, ठीक है, पर इन जनरल कथन 49 दिन की आती है बात। अब देवों की बात कल पढ़ेंगे, क्या रह गया ऊपर का? तीर्थंकर का हो ना, जघन्य बंध काल एक समय, शरणी उतरते समय, उत्कृष्ट देशों न पूर्व मनुष्यों में रहते हुए देशों न पूर्व कोटि, क्योंकि पहले भव में बांधा तो अभी आठवें साल के बाद बांधेगा, और वहाँ ऊपर से देव में से नीचे आया है पूर्व कोटि वाले तो भी बांधेगा आठवें गुणस्थान तक, बाद में तीर्थंकर पद में रहने का काल माइनस करना पड़ेगा, इसलिए कुछ कम पूर्व कोटि हो जाता है। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।